मेरा ही नफा और मेरे ही वृद्ध हो गया है। बहुत समस्या हो गई, अभी उसको सोच नहीं पा रहा है। तो शुक्राचार्य के ब्रह्म पुत्र स्वयं परमात्मा एकांत में उससे बोले, एकांत में उससे बोले, कैसे क्या बोले, जितान तो ये के न तेरत्रयम् भ्रो वितृणा त्रस्त समस्त दृष्टिपम् न तस्य चिन्त्यम् तव नाथ चष्मये न वै शिशूनां गुण दोषयोपगम। हे स्वामी, हम जानते हैं यदि आप अपने भवों को हटा दें तो विविध लोगों के नायक अत्यंत भयभीत होते हैं। आपने किसी की सहायता लिए बिना ही तीनों लोगों को जीत लिया है, इसलिए हमें आपके चिंतित होने का कोई कारण नहीं दिखा। जहाँ तक पढ़ाता कृष्ण है वो एक बालक मात्र है, वो चिंता का कारण नहीं बन सकता, चिंता का कारण नहीं बन सकता। अलग उसके गुणों और गुणों का कोई महत्व नहीं है, बच्चा नहीं बने, कुछ भी करे, उल्टा सीधा कुछ भी काम करे, उसका कुछ महत्व नहीं होता है बच्चे का। तो आपको जो है आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। अब क्या करें, हमारे गुरु शुक्राचार्य के लौट आने तक इस बालक को वरुण पाशों से बांध दो, जिससे वो डरकर भाग ना सके। हर हालत में जब वो कुछ कुछ बड़ा हो जाएगा तो हमारे उपदेशों को ग्रहण करेगा। अभी बच्चा है, आगे चल करेंगे, या हमारे गुरु की सेवा कर लेगा तो उसकी बुद्धि बदल जाएगी। जिस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं है, इसको बांध करके रखो, कहाँ पर हमारे गुरु को जमा, इसको बांध करके रखो कि बाहर जाकर तुम्हारे। लेकिन अब क्या नीति अपनानी है इस बच्चे के साथ में, तो हमारे पिताजी आएंगे वो आपके गुरु हैं, हम तो गुरु पुत्र हैं ना आपके, तो हमारे पिताजी आपके गुरु हैं, तो वो जब आएंगे तो उनके आज्ञा के अनुसार विचार किया जाएगा कि इस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया गया है। ऐसा मेरे साथ मेरे पीछे बोले सब लोग, तथेति गुरुपुत्रोक्तम् अनुज्ञायेदम् अम्ब्रवीत् धर्मोऽभ्युपदिष्टं यो राज्ञो गृहवेदिना से इस तरह गुरु पुत्र उत्तम शुक्राचार्य के पुत्रों सन्न तथा हमारे द्वारा सलाह दिए जाने पर अनुज्ञाय मानकर इदं यह अब्रवीत् धर्मः कर्तव्य हि निःसन्देह अस्य प्रहलाद को उपदेश उपदेश देना चाहिए राजाओं के यह जो गृह वेदिना गृहस्थ जीवन में जिनकी रुचि है। अपने गुरु पुत्र सन्न तथा अमन के इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकश्यप को राजी हो गया और उनसे प्रहलाद को इस धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की, जिसका पालन राजसी गृहस्थ परिवार करते हैं। गृहस्थ परिवार ही गृहवेदी परिवार, अनुवाद जो है लिखा गृहस्थ परिवार, वास्तव में गृहवेदी परिवार करते हैं, गृहवेदी नाम ना गृहवेदी परिवार करते हैं। श्लोक के शब्दों को फिर से समझेंगे तात्पर्य पढ़ने से पहले। यहाँ नारद जी सुना रहे, ये पूरी कथा नारद जी सुना रहे, किसको सुना रहे, जीते महाराज को सुना रहे, किस स्थान पर सुना रहे, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ यही है जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, इंद्रप्रस्थ इसी स्थान पर सुना रहे हैं नारद जी युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। और सब राजाओं पूरी पृथ्वी मंदिर आया राष्ट्र में आयु में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो समय है वो यही है, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है इसने लिखा वो यही है। इसे आपको सुनाते हुए नाराज जी दूसरे महाराज को सुना रहे तो क्या कथा प्रति गुरुपुत्रोक्तम, इस प्रकार से गुरुपुत्र के द्वारा जो कहा गया है अनुज्ञा है, अनुज्ञा में मान करके एकदम ये कहा डरने से ये कहा। तो गुरुपुत्र ने ये कहा कि आपको डरने की चिंता नहीं, डर तो है फिर भी, लेकिन अश्रम को जो है इसी प्रकार से जब कहा जाता है तो कुछ सुनाते हैं। अश्रम के अंदर डर होता है, ऊपर से जब कोई कहता है आपको डर नहीं तो खुश हो जाते हैं, मुझे डर मेरी प्रसन्नता हो रही है। तो गुरुपुत्र ने नहीं कहा कि आप उसके पास जाइए या आप उसको अपने पास बुलाइए, हमें सामने बुलाइए। भगवान के सबको भी बहुत चिंता थी कि अभी तक जितने भी मार डालने के लिए उन्हें प्रहलाद के लिए, तो प्रहलाद को भी पता है कि मेरी आज्ञा से ही मुझे मार डालने का प्रयास किया गया। तो जिन असुरों ने प्रहलाद को मार डालने का प्रयास किया है तो प्रहलाद उनका तो सच्चा दोष ना माने, लेकिन मुझे देखेगा तो मेरे पर आक्रमण कर देगा, मुझे मार डालने के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं ही कारण हूँ, मैंने आदेश दिया। इसलिए हरण कश्यप बहुत डर गया कि ऐसे तो बच्चा है सोचता नहीं, कुछ ज्यादा सोचता नहीं, लेकिन मुझे देखेगा तो फिर सोचने लगेगा मुझे सोचने लगेगा कि इसी आदेश दिया था और मुझे मार सकता है, फिर ये भी क्या हो सकता है मेरी मृत्यु ना हो, कुछ ऐसे भी कारण है कि मुझे वरदान मिला है, दिन भर की ना मरूं रात में ना मरूं, फिर कब मरूं, मर ही नहीं सकता मैं, घर के अंदर ना मरूं घर के बाहर ना मरूं तो फिर कहाँ मरूं, मर ही नहीं सकता। ब्रह्म जी सृष्टि में कोई जीव कोई प्राणी मुझे ना मारे तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ, लेकिन एक संभावना है कि मुझे मार सकता है, इसकी शक्ति तो असीमित है, मुझे मार भी सकता है। तो अपनी तरह सोचता है असल, तो अपनी तरह सोचता है कि कोई असुर को जो है कुछ भी आपका कर दे तो वो जो है तुरंत बदल नहीं जाए, तो प्रहलाद के बारे में ऐसे सोचता है ये भी मेरी तरह असुर होगा। तो गुरु को तुरंत कहा कि नहीं डरने की बात नहीं है, वैसे तो बच्चा ही है स्वतः अपनी ओर से कुछ किसी के ऊपर जो है ये आक्रमण करता ही नहीं है, किसी को कठोर वचन भी नहीं बोलता है, सीधा साधा है और इसको जो है कोई कठोर बात भी बोलता है तो भी उसका उत्तर नहीं देता, उल्टा जवाब नहीं देता है, और बच्चा है तो डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है दोष, इतना ही है कि अपनी बात को छोड़ता नहीं, बात तो कुछ इसमें है वो खतरा तो है नहीं, इससे कुछ किसी प्रकार का खतरा नहीं। तो गुरुकुल में इसको बड़ों के पास उसे बांध करके ये भाग लिया करने वाले भाग रहे तो ठीक है, किसी अंदर डरा हुआ है बहुत, लेकिन गुरुपुत्र ने समझाया कि आप इतने महान हैं, मेरी महानता का वर्णन कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो हरण कश्यप ने ठीक है तो प्रहलाद को जो है प्रहलाद से बात नहीं की और कहा तो अब हम सुन रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या रहते हैं, श्रील प्रभुपाद की हरण कश्यप को चाहता था कि प्रहलाद महाराज देश या विश्व का शासन चलाने के लिए कूटनीतिक राजा जी लोग हैं, प्रशिक्षण हो न कि संन्यास आश्रम के लिए उपदेश प्राप्त करे, क्योंकि पहले ही कहा था जब सबसे पहले कहा था तुमने क्या सीखा, तो क्या कहा था कृपा तो मातम गृह मंदिर को घर तो है नीरज कुआं है जो कि अपने को गिराने के लिए ही बनाया गया है, आप वातम वन में जाकर के हरि की शरण लेना चाहिए तो वनवासी होना चाहिए, तो उसके सन्यासी का धर्म राजाओं के परिवार दो प्रकार के होते हैं, पहले वे जिसके सदस्य गृहस्थ जीवन में आसक्त होते हैं और दूसरे राजर्षि अर्थात वे राजा जो शासक के रूप में शासन करते हैं किंतु साथ ही ऋषि भी होते हैं। तो ग्रह में भी उसको ग्रह में भी होता है, ग्रह में भी जीवन और ग्रह में जीवन। तो समय क्या कहा कि वो धर्म जिसको जो है जो ग्रह में भी राजाओं का होता है, ग्रह में भी राजा, ग्रह में भी सब जो है हम लोगों के निंदा की बात है। अगर आप किसी के हम लोग ग्रह में भी हो है ना, तो वो जो है निंदा सुन रहे तो बहुत चिंता की ग्रह में भी बोल दिया हमें। और गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम होता है, आश्रम का मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो संता है वो आश्रम क्या है। तो गृहस्थ एक आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, चारों आश्रम ये क्या है आश्रम कहलाते हैं, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति जीवन का लक्ष्य होता है। लेकिन गृह में ही जीवन, आश्रम नहीं, गृह में ही जीवन होता है। ग्रह में क्या होता है कि ग्रह में जिसने जो है अपनी पूरी बुद्धि लगाई है, पूरा दिमाग लगाया है कि घर कैसे चलाना, पूरा जीवन और पूरी शक्ति अपनी पूरी बुद्धि जिसकी इसी में लगी हुई है कि घर के काम कैसे होने चाहिए, घर कैसे चलाना चाहिए, घर का घर काम काज और पालन परिवार का पालन पोषण, यही किसी को पेट की पूजा करना है ना। तो हर व्यक्ति जो है यही सोचता है कैसे पेट भरना है, कैसे खाना कपड़ा और मकान इनकी आवश्यकताएं पूरी हुई, ये गृह में जीवन है। तो उनका जो धर्म है उसको सिखाओ, गृह में जीवन का धर्म। गृह में जीवन का धर्म क्या है कि चाहे गलत हो सही हो जितने भी तरीके के उपाय हो, घर चलाना है, अपना पेट भरना है और अपनी संपत्ति अर्जित करनी हो ज़्यादा ज़्यादा, किसी को अगर धोखे भी पहुँचाना पड़े, किसी का शोषण करना पड़े तो भी करो, तो ये गृह वैदिक जीवन का धर्म है, ये धर्म सर्वोच्च धर्म है। ये अपना पालन, अपने कुटुंब का पालन, कुटुंब का पालन रहने का, ये गृह वैदिक जीवन का जो धर्म है इसकी शिक्षा दो इसको राजा बनाना चाहता था। गृह में इसी आर्य प्रणाली में वर्णाश्रम धर्म होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज में निर्भर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र तथा आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। भक्ति से पवित्र हुआ भक्त सांसारिक गुणों से ऊपर दिव्य स्थिति में रहता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज तथा हिरण्यकश्यप में यह अंतर था कि हिरण्यकश्यप चाहता था कि प्रहलाद संसार में लिप्त रहे, किंतु प्रहलाद को प्रकृति के दोनों से ऊपर थे। जब तक कोई प्रकृति के वश में रहता है तब तक उसका वृत्ति पर कर्तव्य यानी धर्म उस व्यक्ति से भिन्न होता है जो प्रकृति के वश में नहीं होता। मनुष्य कैसे धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे कि धर्मराज या यमराज ने अपने आदेश पालक से कहा था, जीव आध्यात्मिक सत्ता है अतः उसका वृत्ति पर कर्तव्य धर्म भी आध्यात्म है। वास्तविक धर्म तो वो है जिसका उपदेश भगवद गीता में हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक धर्म का परित्याग उसी तरह कर दीजिए जिस प्रकार उसे भौतिक शरीर का परित्याग करना होता है, चाहे किसी का धर्म हो, यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी हो, उसे उसका परित्याग करके अपने आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए। मनुष्य से धर्म का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है, जो जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का नित्यदास है, यही मनुष्य का असली धर्म है। प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद ने जो है बहुत अच्छा विश्लेषण किया। तो धर्म के नाम पर वो वास्तव में क्या है, अधर्म ही है। जहाँ कृष्ण की शरण लेने के अलावा जो सभी प्रकार का कार्य हो तो वो सब अधर्म ही है, अज्ञान ही है। श्री गीता शर्मा के थे एक ज्ञान में श्लोकम अज्ञान में प्रश्न था कितना तो ज्ञान वहाँ कहा गया 20 प्रकार की जो बातें हैं भगवान ने बताया तीन अध्याय श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक 5 श्लोक में भगवान ने 20 प्रकार की बातें बताई और कहा कि ये तो ज्ञान इसके अलावा जितना भी सब सब अज्ञान अज्ञान में प्रश्न था तो अज्ञान से क्या होता है अधर्म नहीं होता है धर्म के नाम पर भी उसका अधर्म नहीं होता है तो अब हम समझेंगे हिरण्यकश्यप की स्थिति क्या है कि जो गुरु पुत्र हैं वो क्या कहते हैं कि आपके गुरु महाराज जब आएंगे आपके जब गुरु महाराज आएंगे तो उनकी नीति के अनुसार इस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है वो निश्चित किया जाएगा तब तक आप रुक जाइए तब तक आप रुक जाइए क्योंकि आप जो है मतलब कोई विधि नहीं है प्रहलाद के साथ अब कोई विधि ही नहीं है नियंत्रण करने की प्रहलाद के बच्चे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है इस बात को समझना है शुक्राचार्य सब के गुरु हैं तो शुक्राचार्य का इख्तियार किया जा रहा था लेकिन हुआ क्या शुक्राचार्य नहीं है शुक्राचार्य नहीं आए और प्रहलाद को जो है गुरुकुल में रखा गया और उसने वहां अपनी प्रीति शुरू कर दी आश्रम को जो है प्रीति करना शुरू कर दिया अब इसको तो कोई प्रेस कर नहीं सकता है उसने असर को भी जो है प्रेस करना शुरू कर दिया और असर को जो आप गुरु जी की बात नहीं सुनते हैं जब वो सिखाते हैं तो असर भी जो बच्चे हैं समझ गया है कि इसमें बिगाड़ दिया सबको सब तो कहते हैं ठीक है तो सर और अमर का विरोध तो कोई नहीं करता है लेकिन जैसे प्रहलाद है ना जब बोलेगा तो कृष्ण की भक्ति की बात बोलेगा और नहीं तो अगर कुछ भी बोलते रहो तो सुनता रहेगा तो यह हाल जैसे प्रहलाद का था वो यहाँ जो है इन बच्चों का भी होते हैं सब बच्चों का तो जब सूचना दी हिरण्यकश्यप को कि तुम्हारा ये जो पुत्र है इसे तो पूरे बच्चों को ही बिगाड़ दिया पूरे सब बच्चों को बिगाड़ दिया अब हम तो गुरु रहे हैं हमारे चित्र पर कोई चिंता नहीं है सब इसकी शिक्षा सुनते हैं ये गुरु बन गया है तब हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया प्रहलाद के बहुत क्रोध आया और उसको ये भी समझ आ गया कि ये जो है सीधे विरोध करता नहीं किसी का सीधे विरोध नहीं करता कि मतलब जैसे गुस्सा दिखाए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा ऐसा भी नहीं कुछ बताओ तो सुन लेता है लेकिन फिर अगर कुछ पूछो तो बताएगा तो फिर उसको समझ आ गया कि इसकी अपनी शक्ति है नहीं जो अभी तक ये रक्षा कर अपनी रक्षा करता रहा किसी कितने मारने के बाद किए गए इसकी अपनी शक्ति नहीं है और मैं इसको मार सकता हूँ उसको फिर भी विश्वास हो गया कि मैं इसको मार सकता हूँ तब उसने प्रहलाद को बुलाया अपने सामने और मार डालने के लिए बुलाया कि मैं इसको मार डालूंगा क्योंकि इसमें कोई मतलब ऐसा मतलब चेष्टा है ही नहीं गुरु भी जो है अगर डांटते हैं और कहते हैं लाओ बेटा मैं इसको भी सुधारता हूँ तो शांत रहना रहेगा तो जो है इसकी अपनी शक्ति नहीं है तब प्रहलाद को जो है उसने पूछा कि किसकी शक्ति है पर तो डर नहीं रहा है मेरे से जो है मतलब लोकपाल भी कांपते हैं देवताओं के जो है जो लोकपाल है वो तब कांपते हैं तुम किसकी शक्ति बल पर जो है तुम मेरे सामने डर नहीं रहा तो ये जो है हिरण्यकश्यप को आश्रय देता इसकी अपनी शक्ति तो है ही अगर अपनी शक्ति होती तो दिखाता अपनी शक्ति तो डर जाता है अगर डांटे हैं तो चुप हो जाता है विरोध करते ही इसकी अपनी शक्ति तो है तो इस तरह से हिरण्यकश्यप ने किया और हिरण्यकश्यप के जो है वध के बाद जब नरसिंह भगवान ने मदद कर दिया हिरण्यकश्यप का, तब तक शुक्राचार्य जी नहीं आए। आप सुने जिनका शिष्य है, जिन शुक्राचार्य का शिष्य है हिरण्यकश्यप गुरु, वो गुरु नहीं आए, है ना। तो इसमें ये बात और भी कि शुक्राचार्य जो है यद्यपि असुरों के गुरु हैं लेकिन तो भी बहुत विद्वान है। भगवान ने क्या कहा है गीता में, कभी नाम सुना कभी विद्वान ही शुक्राचार्य। तो अपने विद्वत्ता के बल पर वो जो है भगवान की चेष्टा को जान लेते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है भक्ति के बल पर ही भगवान को समझ पाता है, भक्ति आत्मा जाना भगवान कैसे। ये शुक्राचार्य भगवान की ऐसी विभूति है, ये भी विभूति है कि भक्ति के बिना भी भगवान को जान सकते हैं। इसलिए नहीं आए, उनको पता था कि क्या खतरा है, इसलिए शुक्राचार्य नहीं आए। बाद में प्रहलाद के गुरु बने, बलि महाराज के गुरु बने, तो असुर वंश के गुरु बने शुक्राचार्य जी, लेकिन समय नहीं आए। और हिरण्यकश्यप को जो है उनका ही इंतजार कर रहा था कि मतलब जिससे आसुरी भाव भी हमारा बढ़े, आसुरों का भी जो है आसुरी भाव बढ़े और अपनी रक्षा भी हो, तो ऐसा कुछ उद्देश्य अपने गुरु से प्राप्त होना चाहता है। और प्रहलाद को जो है अब अपने असुरों के समाज से निकाल दिया जाए, ये भी एक मतलब कदम उठाया जा सकता है कि भाई इसको जो है हमने असुरों के समाज से निकाल दिया, अपन जाओ देवताओं के समाज में जाओ या किसी भी समाज में जाओ, तुम जा सकते हो, या वन में जाना वन में जाओ, कहीं भी जाना जाओ। तो अपने गुरु ने तैयार कर रहा था हिरण्यकश्यप को कि इसके साथ में कैसी ही नहीं अपनानी चाहिए, है ना। शुक्राचार्य जी आए, एक ये भी जो है मतलब एक विशेषता है शुक्राचार्य की कि भक्ति के बिना कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन भक्ति के बिना भी जो है कोई व्यक्ति भगवान को जान ले समझ ले, तो वही भगवान की एक विशेष शक्ति है, बात है भगवान की। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि गुरु पुत्रों ने जब हिरण्यकश्यप को सलाह दी कि जब तक हमारे पिताजी नहीं आते हैं, उन दिनों मोबाइल का सिस्टम ही नहीं था कि मोबाइल से जो है बातचीत करने के लिए आप कहाँ हैं कब आएंगे, है ना। आजकल तो मोबाइल का सिस्टम है तो गुरु जी से संपर्क किया जा सकता है, लेकिन मोबाइल का सिस्टम नहीं था, है ना। गुरु जी जब कहाँ गए हैं कब तक आएंगे कुछ पता ही नहीं है, तो हम जब तक ना आए तब तक प्रणाम जो है इसी प्रकार से रखना पड़ेगा। और हिरण्यकश्यप की बहुत बड़ी ये पराजय है, बड़ी लज्जा की बात है कि जिसने अपने शक्ति से सब देवताओं को भी जो है पराजित कर दिया है, तो यहाँ तक स्वर्ग में अधिकार कर लिया है, इंद्र के भवन रहता है पता है, इंद्र और जितने देवता हैं वो तो छिप करके रहते हैं कंदराओं में, पर्वती कंदराओं में रहते हैं, कहाँ रहते हैं मतलब कुछ पता नहीं है, और उसने अपना पूरा अधिकार जमा लिया इंद्र के भवन में हिरण्यकश्यप रहे। ये घटना इंद्र के भवन की है, सर वहां पर है, इतना उसका अपना आतंक बना हुआ है, लेकिन यहाँ अपने पुत्र से जो है वो आतंकित हो गया है, उसका पुत्र और भी बड़ा आतंकवादी निकला तो अपने पिता को आतंकित करता है, तो एक बड़ी मतलब लज्जा की बात है हिरण्यकश्यप के लिए, लेकिन इस बात को आप किसी से बता भी नहीं सकता, ये बात किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें मतलब अपनी ही लज्जा हो रही है, अपनी ही नंदा हो रही है, तो किसको बताए। असुरों के लिए जो है ये बड़ा मुश्किल काम होता है, अपनी निंदा करना या अपनी निंदा सुनना असुरों के लिए असंभव, वो जो है लज्जा से उसने सिर नीचे कर लिया, लज्जा से नीचे कर लिया, अब उसको क्या आदेश दे, किसको आदेश दे, कुछ अब उपाय नहीं सुन रहा, कोई उपाय नहीं सुन रहा। गुरु प्रसन्न कहा कि अरे चिंता की बात नहीं, तो मान लिया कि चीज चिंता की बात नहीं। गुरु प्रसन्न कहा ठीक है, बड़ों के पास से बांध दो, डर के मारे ना भर जाए। उसको तो डर है नहीं, उसको कोई डर नहीं है। बड़ों के पास से बांध दो, डर के मारे ना भर जाए। तो प्रहलाद महाराज को जो है गुरुकुल में रखा गया, और आगे चलकर के फिर होता गया है कि गुरु जो है हमेशा ताड़ना करते रहते हैं, प्रहलाद ताड़ना करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, और सब बच्चों के बीच में प्रहलाद को ही मतलब वो कठोर व्यवहार करते हैं। जबकि राजा क्या होता है, लेकिन प्रहलाद को जो है हमेशा दबाते रहते हैं, इसी बात में डांटने को प्रहलाद को ही डांटेंगे। जब जो जो गुरु हैं, दोनों गुरु हैं, तो किसी काम में चले जाते हैं, तो बच्चों को जो है अवसर मिलता है खेलने का, तो अगर बच्चे खेलने लगते हैं तो प्रहलाद खेलते नहीं हैं, तो प्रहलाद खेलते नहीं हैं, तो उनको लगता है कि बेचारा नहीं खेल रहा है क्योंकि बहुत डांटा जाता है, अपना मन में जो थोड़ा दुखी होगा इसलिए खेलने के लिए निकाल रहा है। अभी तो गुरु जी नहीं है ना, तो प्रहलाद को बुला लो खेलने के लिए, उनको दया आती है, हमेशा डांट खाता रहता है बेचारा, आओ खेलो प्रहलाद आओ खेलो, है ना। प्रहलाद को कोई इस बात का दुख नहीं है कि मेरे गुरु को डांटा जा रहा है, उनको इस बात का दुख नहीं है, उनको इस बात का दुख है कि इंजन के अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, उल्टा ज्ञान सिखा रहे हैं। और जो बच्चे हैं जब बुलाते हैं तो ये उनकी सेवा हो गई, वैष्णव की सेवा, वैष्णव की परिस्थिति की दया आती है उनको किसी कारण से, हालांकि वो मतलब कारण नहीं था वास्तव में कि प्रहलाद दुखी है इसलिए खेलना चाहते थे, वो तो जो है भगवान के चिंतन में आनंद ले रहे हैं, स्मरण कृष्ण के स्मरण में आनंद ले रहे हैं, उनका वैसे ही खेल इतने की रुचि नहीं है, उन्हें कोई दुख नहीं है कि गुरु जी डांटते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा सोचते हैं कि गुरु जी बहुत डांटते हैं, इसको आओ फिर अभी तो गुरु जी नहीं है, आओ फिर तो बढ़ा जी हंसते हैं उनको बढ़ा दें, तुम लोग आओ तुम लोग आ जाए, तो बढ़ा बढ़ाते हैं और कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई शोक नहीं है। जब बुलाते हैं उनको लगा, बच्चों को लगा कि ये हमसे ज्यादा सुखी है, ये हमसे ज्यादा सुखी है, इसके बाद सुनना चाहिए, तो तब निरस्तर हृदय क्षमा, तो अपना हृदय और नेत्र जो है सब मतलब अर्पित कर दिए प्रहलाद को, हृदय से और नेत्रों से भी जो है मतलब पूरी तरह से प्रहलाद केंद्रित कर दिए, सुनने लगे, और प्रहलाद जी जो है फिर ज्ञान देने लगे। तो इस तरह से देखो जो भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान प्रति समर्पित होते हैं, तो वे किसी को डराते भी नहीं हैं और किसी से डरते भी नहीं हैं, उन्हें किसी से डर नहीं होता है। लेकिन जो भगवान के समर्पित भक्त नहीं हैं, आपसे सुधार होते हैं, वे सबको डराते हैं, तो अंदर से भगवान जो उनके हृदय में डर पैदा करते हैं, भजन के शुरू के अंदर अब डर पैदा हो गया, हालांकि डरने का कोई कारण नहीं है, तो प्रहलाद थोड़ी कुछ आक्रमण करेंगे, लेकिन उसको डर हो गया कि मेरे ऊपर आक्रमण कर इसकी शक्ति ऐसे। तो ये जो है मतलब भगवान का काम है, भगवान कहा जाता है भक्ता नाम अभय करा, भक्तों को वो अभय प्रदान करते हैं, भक्तों के अभय प्रदान करते हैं, अब भक्ता नाम अभय करा और भक्तों को भय करा। तो प्रहलाद जी का जो है मतलब प्रहलाद जी के अंदर कोई डर नहीं है, ना वो किसी को डर पैदा करते हैं, ना उनको डर बनाए, और हिरण्यकश्यप असुर वो सबको डर पैदा करता है, देवताओं को उसने डर पैदा कर दिया, लोकपाल सब कांपते हैं, आज जो है उसको डर पैदा हो गया अंदर से, डर पैदा हो गया। तो आप लोगों की आंखों में काफी नींद दिखाई दे रही है, तो आप लोगों की ओर से फिर कुछ नहीं जो चर्चा है उससे कुछ आंखें खुल रही हैं।
धर्म के अनुसार धर्म की अभ्यास करके समझ क्या है कि धर्म तो जाति नहीं
ना धर्म जाना चाहते हैं, केवल अर्थ और काम, धन प्राप्ति हो किसी प्रकार से भी हो, धर्म वो अधर्म हो, धर्म का कोई विचार ही नहीं, धर्म की प्राप्ति और काम हिंदी करते हैं, धर्म के अनुसार आप जो है धन प्राप्त करें, उसके काम हिंदी प्राप्त करें, और जब आप इससे आपको निराश हो जाए, काम और से निराश हो जाए, तो आप मोक्ष प्राप्त करें। हालांकि इन चारों से ऊपर प्रेम कृष्ण प्रेम इन चारों से ऊपर है ना, तो प्रभुपाद उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन फिर निम्न धारा के लोग हैं तो उनके लिए प्रभुपाद यही चर्चा करते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद की जो जो शिक्षाएं हैं वो सभी प्रकार के लोगों के लिए है, तो कभी प्रभुपाद जी जो है ऊंचे धारा की बात करते हैं, कभी नीचे धारा की जो लोग हैं वो कितना समझ पाएंगे, कितना कर पाएंगे, उसकी बात करते हैं। ठीक है, और
जो पूरा विभूति और भगवान ने बोला है पूरा अध्याय है कि कैसे अर्जुन जो है मतलब सब जीवात्मा समझ सके भगवान कैसे इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग रूपों को, जैसे वो कहते हैं कि कवियों में जब क्वेश्चन ना हो तो इसको भी बारीक रूप से कहते हैं, जैसे जल में से भगवान कहते हैं स्वाद है तो पता लगता है कि पानी नहीं पिए और कुछ भी पिए, जैसे भगवान कवियों में कृष्णा कहते हैं तो उनसे कैसे समझते हैं।
जल में स्वाद ये जो भगवान बताते हैं जल में स्वाद, ये सातवें अध्याय की बात है, सातवें अध्याय में भगवान बताते हैं कुछ बातें बताते हैं तो वो विभूति नहीं है, दसवें अध्याय में जो भगवान बताए वो विभूतियाँ हैं, ये जो जल में स्वाद है ये विभूति नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से मतलब मुझमें है पिरोया हुआ है, पूरा संसार पिरोया हुआ है, जैसे कि सूत्र मणि बना कि माला जो है जो मन के होते हैं तो उनमें धारा जिस प्रकार से धारण करता है तो धारण भगवान धारण करते हैं, अभी जो धागा है ये धारण कर रहा है, सब पूरा मन के इन फूलों का पता नहीं चलेगा जितने पूरे सब एक साथ कैसे हैं वो धारण दिखाई पड़ता है, तो हर चीज में भगवान जो है मतलब जो धारण कर रहे हैं इंसान को तो वो चीज तो कुछ सूक्ष्म बात है। प्रभुपाद उसको इस तरह से भी समझाते हैं क्या इस तरह से मतलब देखिए जल में स्वाद प्रभुपाद जी बहुत ही इसका जो है उपयोगी अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन एक दूसरा अर्थ ये भी है कि भगवान जो है पानी में रस है उस कारण ही पानी टिका हुआ है, और पानी में रस नहीं होगा फिर पानी क्या हो जाएगा अग्नि बन जाएगा, प्रलय होती है तत्वों की प्रलय होती है तो पृथ्वी में जब गंध नहीं रहती है तो जल बन जाते हैं, गंध के कारण ही पृथ्वी जिस समय नहीं रहेगी पृथ्वी में तो पानी बन जाए, पानी में रस तो रस के कारण ही पानी का अस्तित्व है, रस नहीं रहेगा तो पानी क्या बन जाएगा अग्नि बन जाएगा, अग्नि में भी रूप रूप तक बना है तो उसका कारण अग्नि का अस्तित्व, और रूप अगर नहीं रहेगा तो अग्नि क्या बन जाएगा वायु बन जाएगा, इस तरह से भगवान बताते हैं ये मतलब भगवान धारा की है मतलब धागा जैसे उससे निकलता है, और धागा ना रहे तो किसी भी फूल के अंदर अगर धागा ना रहे तो इस फूल का फिर पता नहीं चलेगा, आप सुने ना उस फूल का पता चलेगा, इसी प्रकार से भगवान हो जाते हैं विभूति हो जैसे दिन भगवान विभूति आने का तो शुक्राचार्य जानते हैं, और शुक्राचार्य वैसे अगर देखा जाए तो भक्त हैं लेकिन कुछ ऐसे कारण बन गए कि अश्रम के गुरु हैं, जब भगवान है ब्राह्मण जी ने कहा कि बलि को तो हम बांध दिया है और अब तो वो यज्ञ नहीं कर सकता तो उसका यज्ञ आप पूरा करिए, शुक्राचार्य से कहा था कि अब आप दूसरे पूरा करिए, तो शुक्राचार्य ने कहा मंत्र तस्त्र सिद्धम देश का आय बसता सर्वम करो देश सिद्धम नाम संकीर्तन तक आपके नाम कीर्तन से ही सब क्षेत्र दूर हो जाते हैं, मंत्र के और तंत्र के और स्थान के और समय के और वस्तु के जितने भी दोष है वो सब दूर हो जाते हैं आपके नाम कीर्तन। जब आप स्वयं उपस्थित हैं तो यज्ञ तो पूरा हो जाए, फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं यज्ञ पूरा करता हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं पूरा करता। तो शुक्राचार्य भगवान के प्रति हो जाते हैं, लेकिन वैसे सुनते गुरु हैं और उनके दिखावा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं कि वैसे ही हैं। ठीक है, मैं कुछ करूँ तो प्रश्न यह है कि रणकश्यप ने जब प्रहलाद जी के आदेश दिया था कि इसको ले जाओ और इसका वध कर दो, तो रणकश्यप ने स्वयं अपने हाथों से प्रहलाद का वध क्यों नहीं किया? पिता का स्नेह था। अरे बहुत गुस्सा आ रहा प्रहलाद को, बहुत गुस्सा आ रहा और क्या कहना पड़ा, तो गोद से पछाड़ा नहीं था ऐसे पकड़ा, तो गोद से पकड़ा। ध्रुव महाराज को तो चढ़ने नहीं दिया गोद में, उससे उनको इतना मतलब आक्रोश था कि वो जो है इतने दुखी हुई और प्रहलाद को तो गोद से उठा करके ऐसे पड़ता। ये प्रहलाद जी की स्थिति बहुत ऊंची है ध्रुव महाराज की, तो इतना करके और हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया असुर को कि इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ, तो मेरे सामने मतलब इसका वध ना करो। क्यों हिरण्यकश्यप ने मतलब अपने हाथ से वध नहीं करना चाहा का कि इसने, लेकिन अपने सामने भी बद करने दिया कि नहीं, मैं अपनी आंखों से मेरी आंखों के सामने बद करो, क्यों इसने इसने पत्रकार इसने भी है। और उदाहरण क्या दिया, उदाहरण क्या उदाहरण दिया है, मैं कैसे बताऊं है, नहीं वो उस समय नहीं, हाँ अगर मान लो उंगली में कोई जहर मतलब हो जाए जहरी जो कोई कट गई उंगली और आपने ध्यान नहीं दिया और उसमें जहर हो गया है, तो अब ये उंगली का जहर पूरे शरीर में फैले, उससे पहले उंगली को अब हाँ अपने हाथ से नहीं काट सकते, उंगली को अपने हाथ से नहीं काट सकते है ना, किसी यहाँ को कटवाना पड़े और कटवाने पर भी यही नहीं और बड़ा कष्ट भी हो रहा है कटवाने में उंगली और देखता भी नहीं, अरे मुझे कष्ट के साथ कटवा रहा है। इसी पर से हिरण्यकश्यप ने आगे दी प्रहलाद को कि इसका वध कर दो, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन अस्त्रों के समाज में जो है एक विषैला एक ये बच्चा है पूरे अस्त्रों को जो है ये बिगाड़ देगा विष फैलाएगा, क्योंकि अब इसका तो सुधार नहीं सकता, उंगली का हमने बहुत प्रयास कराया है लेकिन उंगली का अब विष तो जा नहीं रहा है तो काटना ही पड़ेगा, तो प्रहलाद को जो है सुधारने की तो बहुत उपाय की है, अब इसका क्या करो बद कर दो अपनी उंगली खुद ही व्यक्ति कटवाता है अपने हाथ से नहीं काटता इस तरह से। और युधिष्ठिर महाराज ने भी प्रश्न यही किया था, युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न यही किया था जब संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी ने बताया या माफ करना नारद जी ने बताया शिशुपाल के बारे में कि इसने जो है अपने जब पुत्र के साथ में जब इसने विरोध किया या वध करने की कोशिश की तब भगवान ने इसका वध किया कैसे हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज यही बात पूछते हैं कि कितना भी खराब हो लड़का अपने लड़का या अपने लड़के को कौन मारता है, अपने हाथ से अपने लड़के को फिर भी कोई तो नहीं मारता, तो हिरण्यकश्यप के पास ऐसे कैसे कारण बन गए कि अपने पुत्र को ही वो मार डालने के लिए तैयार हो गए, तो यही जो है मतलब कारण था कि इतनी लंबी कथा मतलब आया था इतनी लंबी कथा। इसलिए ऐसे कारण कैसे रख रहे कि हिरण्यकश्यप को अपने ही पुत्र को मार डालने के लिए तैयार कर रहे? सही सही बात है, इतना मतलब ये छोटे दिमाग का है ना, इतना छोटे दिमाग का है, लेकिन अपने हाथ से नहीं मार सकता। तो इस तरह से जो है कारण बन गए, उसके बाद और कारण बने, और कारण बने, और अंत में कुछ निश्चय दिया कि मैं तेरा राज करूंगा। भगवान की जय, श्री राधिका रमण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम।